हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 31 एंड 32। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंस, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। स्मरतव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे विद्धि निषेधाशु, एतयो एव किंकरः। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु यतमिदं तत्राग्रह न परह। करारविन्दे न पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिभे पिबस्वा मृत्युमेतदेव, गोविंद दामो धर्माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
श्री अद्वैत कथाधारा श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अध्याय 15 पांडवों का सामयिक स्थान प्रस्थान श्लोक नंबर 31। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी सौनक मुनि को बता रहे हैं और समस्त ऋषियों को कह रहे हैं, विशोको ब्रह्म संपत्या संचिन्नद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद संभवः। विशोको ब्रह्म संपत्या संचिन्नद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद संभवः। विशोको ब्रह्म संपत्या संचिन्नद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद संभवः। शब्दार्थ विशोको मतलब शोक कहते हैं दुख को, और विशोको मतलब दुख से रहित। दुख जब समाप्त हो गया, जब अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के उन उपदेशों को याद किया, ब्रह्म संपत्तिया मतलब आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी। अब क्योंकि अर्जुन जो है उसको आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त हो गए, उनको यह अपनी वास्तविक स्थिति याद आ गई कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उससे उसका शोक समाप्त हो गया। और संचिन्न अद्वैत संशय, द्वैत के जितने भी संशय, द्वैत मना इस भौतिक जगत में कैसे होता है, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान, ये सब संशय इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर के कारण है। लेकिन जब वो ब्रह्म संपत्ति यानी आध्यात्मिक में स्थित हो गया, तो ये सारे संशय जो है वो पूरी तरह संचिन्न अद्वैत संशय संचिन्न हो गए, समाप्त हो गए। और उसके बाद लीन प्रकृति नैर्गुणिया, लीन मतलब लीन हो गए, तीन गुणों से मुक्त हो गए, और वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान यानी आध्यात्मिक स्थिति की प्राप्ति हो गई उसको। तीन गुणों से मुक्त लीन प्रकृति नैर्गुणियात अलिंगत्व का मतलब होता है कि वो अब लिंग कहते हैं शरीर को, भौतिक शरीर को, अलिंगत्व मतलब कि वो भौतिक शरीर से विहीन हो गए। विहीन हो गए मतलब अब वो आत्मा में लीन हो गए, और भौतिक शरीर से विहीन, अब आत्मा में लीन हो गए कि मैं आत्मा हूँ, तो ये शरीर तो फिर बीच में नहीं आया ना, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही ये तीन गुण हम पे अटैक कर रहे हैं। भौतिक प्रकृति के अंदर ये तीन गुण है, आत्मा पे नहीं कर रहे अटैक। तो फिर तीन गुणों से मुक्त हो गए, अलिंगत्वात् असंभव कहते हैं फिर जन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो चुके थे। अब क्योंकि वो आध्यात्मिक, उसके पास ब्रह्म संपत्ति प्राप्त हो गई थी, तो जो दुख था कि भगवान मुझसे दूर हो गए हैं, मैं भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं अकेला हो गया और अभी मैं दुखी हूँ, ये प्रॉब्लम हो गई है, ये सब जो द्वैत के संशय थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए, और तीन गुणों का गुण जो अटैक किए हुए थे उनसे मुक्त हो गए, क्योंकि वो अब अलिंगत्वात् मतलब आध्यात्मिक शरीर, ये भौतिक शरीर से मुक्त होकर आध्यात्मिक में स्थित हो गए थे, और जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त हो गए थे। अनुवाद देखिए, आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसका द्वैत का संशय पूर्णतया छिन्न हो गया। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर आध्यात्मिक को प्राप्त हुए। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी क्योंकि वह भौतिक स्वरूप से मुक्त हो चुके थे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से बहुत डिटेल से समझाएंगे इस श्लोक को, कृपया मेरे साथ साथ समझेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से द्वैत के संशय प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। द्वैत क्या है? ये जो भौतिक जगत में जो ड्वेलिटी है वो क्यों हो रही है? देहात्म बुद्धि के कारण, इस शरीर के कारण। शरीर को ही सुख दुख लगता है, शरीर को ही मान अपमान होता है, शरीर के लिए सर्दी गर्मी है, शरीर के लिए ही अच्छा बुरा है, लेकिन आत्मा को ये सब कुछ नहीं लगता। हमें ये द्वैत क्यों फील हो रहा है? देहात्म बुद्धि, क्योंकि हम अपने आप को अज्ञान के कारण या शरीर मान लेते हैं, ये इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, उसी के कारण ये ड्वेलिटी है। तो यहाँ पर ये संचिन्न द्वैत संशय, क्योंकि वो अब आध्यात्म में स्थित हो गया था इसलिए ये द्वैत जो है वो समाप्त हो गया था। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर की पहचान आत्मा से करते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। सबसे बड़ी मूर्खता क्या है कि हम इस भौतिक शरीर को ही क्या समझते हैं? आत्मा समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। देहात्म बुद्धि, देह में आत्मा की बुद्धि, और इस भौतिक शरीर से रिलेटेड जितने भी वस्तुएं हैं और व्यक्ति हैं उनको अपना मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय। मेरा है या मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ तभी ये मेरा है, और ये मेरा है तभी मुझे दुख देता है। तो क्या होता है, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरी जाति, तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों ब्राह्मणक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये जो मैं और मेरा जो हम सोचते हैं वही हमारे लिए वास्तव में मोह उत्पन्न, हम ये शरीर नहीं है और इस शरीर से रिलेटेड कोई वस्तु हमारी नहीं है, हम आत्मा हैं, हमारा अस्तित्व है भगवान की सेवा करना। जब हम इस वास्तविक ज्ञान को भूल जाते हैं तो इस भौतिक जगत के इस देह से रिलेटेड समस्त वस्तुओं को मेरा कहते हैं, जो हम एक बहुत बड़ा मोह है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के आत्मसात करने से ऐसे मोह से छुटकारा पाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जब हम सुनते हैं तो उससे हमारी देह से जो आत्मा की बुद्धि है, देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है और आत्म साक्षात्कार होने लगता है। हम ये जान जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हमारा संबंध या हमारा इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है, हमारा संबंध केवल कृष्ण से है। तो क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है, शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। अतएव पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान ही सब कुछ है। वही भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी सब कुछ भगवान की है, सब कुछ भगवान का है, और प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है, थोड़ा सा अंश है वास्तव में सब भगवान का, और शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। आत्मा और भगवान अभिन्न है, परंतु भगवान का एक अस्तित्व है, और आत्मा का क्या अस्तित्व है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हमें भगवान की सेवा करनी। तो अतएव पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होने से द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। भौतिक जगत में जो शरीर के साथ द्वैत होता है, सुख दुख लाभ हानि, ये सब समाप्त होता है। और जो ही अर्जुन ने भगवद गीता के उपदेश को ग्रहण किया,
और जब यह पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो द्वैत समाप्त हो जाता है। अब जब जैसे ही अर्जुन ने श्रीमद् भगवद्गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जिसमें वो दक्ष था, उसके परम मित्र भगवान श्री कृष्ण के संबंधित भौतिक बोध दूर हो गया। भौतिक बोध क्या था कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आए थे, मेरे साथ रहे थे, कितना हम आनंद कर रहे थे, अब भगवान चले गए हैं, अब मैं अकेला रह गया हूँ, कृष्ण चले, कृष्ण नहीं रहे, तो ये भौतिक बोध समाप्त हो गया। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप लीलाओं गुण आदि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित है। अब उसे यह रियलाइज होने लगा कि भगवान कहीं नहीं गए, भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने गुण के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा आज भी मेरे साथ है। आज भी यदि हम ऐसा अनुभव करें कि कृष्ण हमारे साथ है, हम कृष्ण के उपदेशों को पढ़ रहे हैं, देखो कृष्ण कह रहे हैं, कैसे कितना अच्छा लगता है जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, कृष्ण ने ये लीला की, तो फिर भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान का नाम जब हम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भगवान से भिन्न नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो अर्जुन ने जैसे भगवान के उपदेश को ग्रहण किया तो भगवान का जो भौतिक बोध था वो समाप्त हो गया।
आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब अर्जुन वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान श्री कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवान की निरंतर संगति में इसी जीवन में भी रह सकता है, यानी कि अब उसे ये नहीं लग रहा था कि मेरे भगवान अब चले गए हैं, अब इस भौतिक जगत में, इस शरीर में मैं भगवान की संगति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो जीव को इसी भौतिक शरीर में, इसी जीवन में ही भगवान की संगति का अनुभव होता है। यदि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, चिंतन तथा पूजन करें, इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्वैय ज्ञान भगवान को जान ले, तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है और इस धूल के हटते ही मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण माशनम भव महादावाकी निर्वापणम। जब हृदय का ये दर्पण जो है, चेतो दर्पण मार्जन होता है, तो फिर जो महाधावाग्नि है वो समाप्त हो जाती है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। और जो जीवन की अविद्या है, अज्ञानता है, मूर्खता है कि मैं भगवान से अलग हो गया हूँ, या मैं यह शरीर हूँ, मैं और शरीर जो ये भौतिक जगत में द्वैत महसूस करता है, दुख सुख मान अपमान, ये सब अज्ञानता समाप्त हो जाती है। और आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत साधम, जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते जाते हैं तो आनंद वर्धन होता है, हृदय का आनंद, क्लेश समाप्त होता है, बुद्धि जो है वो तीव्र हो जाती है, उसे पता, बुद्धि जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करती है। और प्रतिपदम पूर्ण अमृतम आस्वादनम, एक एक कदम पर जैसे जैसे भगवान के पवित्र नाम का जप करते जाते हैं तो हर एक कदम में पूर्ण अमृतस, ये अमृत का आस्वादन होता है। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करते जाते हैं तो समस्त जो क्लेश है, जो अशुद्धता है, वो समाप्त होती जाती है और जीव जो है संपन्न हो जाता है, कि इसमें भगवान की सानिध्य को अनुभव करने में। तो भव बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतएव ज्यों ही कोई परम ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है या वह जीवन के मिथ्या बोध से उभर जाता है। आदमी आध्यात्मिक ज्ञान क्या है कि मेरा इस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है, मैं वास्तव में आत्मा हूँ और कृष्ण के साथ अपने संबंध को निर्माण करने के लिए यह देह मुझे मिला है, इसके द्वारा मुझे वो कार्य करना है जिससे मैं कृष्ण को अपने प्रेम का, जो कृष्ण के साथ मेरा प्रेम का संबंध है जो विस्मरण हो गया उसको पुनः स्मरण करूं, तो शरीर का मिथ्या बोध उभर जाता है। इस प्रकार शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है और यही आध्यात्मिक अनुभूति है। जीव की यह व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रजो तथा तमोगुण से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त पुनः बद्ध जीवन में ही नहीं फंसता है। जब हम प्रकृति के इन तीनों गुणों की चुंगल से आगे निकल जाते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकलते हैं, वो कैसे होता है? जब हम शुद्ध सत्व में आते हैं, शुद्ध सत्व मतलब भगवान जो कि शुद्ध सत्व में है, वासुदेव में स्थित हो जाते हैं और अपने सारे कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं तो फिर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, फिर पुनः इस बद्ध जीवन में नहीं फंसना पड़ता। जब तक मनुष्य में शास्त्रों द्वारा नियत भक्ति के द्वारा आवश्यक दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती है तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता है। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत ही पहले प्राप्त हो चुकी थी, अतएव ज्यों ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेशों की शरण ग्रहण की और इस तरह वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। वह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जब तक जीव शास्त्र में बताए हुए जो मार्ग है कि किस तरह से संसार की प्रत्येक वस्तु में भगवान है और इस तरह से भगवान के अस्तित्व को महसूस करके और भगवान की भक्ति में जब जीव लग जाता है तो फिर उसे आवश्यक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और जिसके कारण वो भगवान की उपस्थिति को अनुभव करता है। और ये कैसे होता है? जब जीव को ज्ञान प्राप्त होता है तो अर्जुन को तो ये ज्ञान युद्ध क्षेत्र में ही भगवान ने दे दिया था और आज जब उससे भगवान की अनुपस्थिति का एहसास हो रहा था तो उन्होंने पुनः भगवद्गीता के उस उपदेश को पुनः याद किया और उससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ कि अभी भी कृष्ण उनके साथ है और इसके द्वारा वो अपनी शोक को विशोक की अवस्था में बदल सका। विशोक मतलब कि अभी उसको शोक और चिंता कोई भी नहीं थी, उसको यह रियलाइज हो रहा था कि कृष्ण आज भी मेरे साथ है अपने उपदेशों के द्वारा, अपने नाम के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा और अपने सानिध्य के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा कृष्ण मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकते क्योंकि वो सदैव मेरे साथ रहेंगे। आगे सुध गोस्वामी कहते हैं, निशम्य भगवन् मार्गम् संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृत्तात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवन् मार्गम् संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्री निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवन् मार्गम् संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्री निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः शब्दार्थ निशम्य भगवन मार्गम। निशम्य मतलब कहकर भगवन अर्थात भगवान के विषय में, मार्गम भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के रास्ते, यानी कि भगवान के विषय में जब उन्होंने सुना कि अब भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया और इस भौतिक जगत से वो पुनः अपने धाम में चले गए हैं, और संस्थाम यदुकुलस्य च, और संस्थाम का मतलब है कि अंत हो गया है, यदुकुल सारे यदुकुल का अंत हो गया है, और स्वपथाय गतिम, स्वपथाय मतलब भगवत धाम, जो भगवत धाम की स्वपथाय मतिम चक्रे, तो उसने यह इच्छा प्रकट की कि अभी मुझे भी भगवत धाम के लिए जाना चाहिए। निवृत्तात्मा युधिष्ठिर, निवृत्तात्मा मतलब एकांत में, राजा युधिष्ठिर ने ये इच्छा की कि अब क्योंकि भगवान भी अपने धाम चले गए हैं और सारा यदुकुल भी उसका भी अंत हो गया है, तो फिर मुझे भी इस भौतिक जगत को छोड़कर चला जाना चाहिए। इस जगह पर कृष्ण नहीं है, वहां पर रहने का क्या अर्थ है, तो हमें भी ये भौतिक जगत छोड़ कर निकल जाना चाहिए। अनुवाद देखिए, भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन होकर, गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पार्थिव अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों की ओर मोड़ा और भगवान के प्राकट्य तथा प्रायाण के विषय में सोचने लगा। मृत्युलोक में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्ध्यान होने का उद्देश्य भगवान की परम इच्छा पर पूर्णतया निर्भर करता है। वे जीवों की भांति किसी पराशक्ति द्वारा प्रकट होने तथा अंतर्ध्यान होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। जब भी भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान हैं। सूर्य स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातः काल उदय होता है। सूर्य पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए, जो सूर्य की सृष्टा तथा नियामक है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझता है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से भगवान के जन्म और कर्म के विषय में बताते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुना, कि मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। तो जो कोई यह समझता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो केवल इतना समझ लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, तो फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, जब वो इस भौतिक शरीर को छोड़ता है तो उसको वापिस से जन्म नहीं लेना पड़ता। मामेति सर्जुना, अर्जुन फिर तो वो मेरे धाम में आ जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य होता है
वो सुबह को उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन वो अस्त होने से पहले ही कहीं और उदय हो जाता है। तो सूर्य का अस्त होना, उदय होना कहीं उनके मृत्यु होने और जन्म लेने के बराबर नहीं है। ये तो सूर्य जो है वो अपना कार्य कर रहा होता है, और कहीं पर किसी समय कहीं पर उदय होता है, किसी समय कहीं पर उदय हो रहा होता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना ही भारत में प्रातःकाल उदय हो जाता है। मतलब सूर्य को जरूरी नहीं है कि कहीं पर उदय होने के लिए हरुभरु कहीं पर अस्त होना पड़ेगा, तो वो तो अपना चक्कर ऐसे काट रहा होता है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि सूर्य उदय हुआ है, अस्त हुआ है, एक पर्टिकुलर जगह पर ऐसा लग रहा होता है। सूर्य तो अपना ही चक्कर काट रहा होता है। उसी प्रकार भगवान भी जन्म लेते हैं और फिर कार्य करते हैं अपने विभिन्न कार्यों से। हमारी तरह भगवान बद्ध नहीं है कि अपने कर्मों के अनुसार भौतिक जगत में आते हैं। वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपने कार्य करते हैं और फिर पुनः अपने गौलोक धाम में चले जाते हैं। और जो व्यक्ति केवल भगवान के इन दिव्य कर्मों को समझता है तो वो मुक्त हो जाता है और वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। वहाँ पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर चिरंतन रह सकते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने वाले सारे लोग सदैव तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहाँ न बुढ़ापा है, न रोग है, न मृत्यु है। क्योंकि वहाँ पर मृत्यु नहीं होती, अतएव वहाँ पर जन्म भी नहीं होता। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोदान को समझकर मनुष्य जीवन की सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापिस जाने के विषय में सोचने लगे। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, और यदुवंश में सारे सदस्य जो भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे उनके पार्षदित हैं। इसी तरह महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा माता आदि भी पार्षद थे। चूंकि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति समझा रहे हैं कि भगवान जब आते हैं तो अपने पार्षदों को लेकर आते हैं इस भौतिक जगत में। तो जितने भी भगवान के यदुकुल के लोग थे वो सब भगवान के पार्षद थे, और जब वो आए थे तो सारे लोग उनके साथ आए थे। और अब जब भगवान चले गए तो यदुवंशी भी सब चले गए, और फिर युधिष्ठिर महाराज ने भी यही निश्चय किया कि अब हमें भी चले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपनी लीला को समेट दिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भगवान की जो लीलाएं हैं और भगवान के पार्षदों की जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, तो उनको सुन करके अब युधिष्ठिर महाराज ये कर रहे हैं या फिर ऐसा, ये सब लीला हो रही होती है। इसलिए इन दिव्य कार्यों के जो बाह्य लक्षण होते हैं उनसे कभी भी मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। भगवान की लीलाओं को और भगवान के पार्षदों की लीलाओं को श्रवण करके केवल अपने हृदय में वो जो स्मरण है ना भगवान का, वो भगवान का स्मरण चलता रहे कि आज ऐसा भगवान ने किया, आज भगवान के पार्षदों ने भगवान के विषय में श्रवण कर ऐसा किया। उनको श्रवण करके भगवान की स्मृति जो है वो अपने बुद्धि में बढ़ानी चाहिए। और बाकी भगवान की लीलाओं में ऐसा कोई है ना मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए उनकी लीलाओं को श्रवण करके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। आई